ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 252। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह सब जगत आत्मरूप है, इसलिए हे रामचंद्र जी, सब जगत अकारण और आत्मा का आभास है, कारण से कुछ नहीं बना। अनंत ब्रह्म सत्ता ब्रह्मांड में आभास जगते हैं, वे अज्ञानी को कार्य कारण सहित प्रतीत होते हैं। उसमें नीति हुई है, पर जाकर देखोगे तब सब अद्वैत रूप दिखेगा। न कोई नीति है और न जगत है। जब तक जीव अज्ञान निद्रा में सोया हुआ है, तब तक जो पदार्थ उस सृष्टि में है वही दिखेगा, और जैसा कर्म है वही भासित होगा। यह जगत एक स्वप्न है, जिसमें स्वर्ग आदि इष्ट पदार्थ और नरक आदि अनिष्ट पदार्थ है, और उनके प्राप्त होने का साधन धर्म तथा अधर्म है। धर्म स्वर्ग सुख का और अधर्म नरक दुख का साधन है। जब तक अविद्या रूपी निद्रा में जीव सोया हुआ है, तब तक इसको यथार्थ जानता है, पर जब जागेगा तब सब आत्म रूप होगा। इष्ट अनिष्ट कोई न रहेगा। यह सब जगत अनुभव रूप है, और अनुभव सदा जागृत ज्योति है, उसी को जानो। जिन पुरुषों ने इस अनुभव को नहीं जाना, वे उन्मत्त पशु हैं, क्योंकि वे आत्मबोध से शून्य हैं। वे सदा समीपवर्ती आत्मा को नहीं जानते हैं, इसे उन्मत्त है, क्योंकि उन्मत्त को भी अपना आपा भूल जाता है। जैसे किसी को पिशाच लगता है, तब उसको अपना स्वरूप भूल जाता है और पिशाच ही देह में बोलता है, वैसे जिसको अज्ञान रूपी भूत लगता है वह उन्मत्त हो जाता है, आत्म स्वरूप को नहीं जानता। वह विपर्य बुद्धि से देहादि को आत्मा जानता है और विपर्य शब्द करता है। जिनको स्वरूप में अहम प्रतीति है, उनको सब जगत आत्म रूप दिखता है। हे रामचंद्र जी, आदि सृष्टि किसी कारण से बनी होती तो उसके पीछे प्रलय आदि में कुछ शेष रहता, पर वह अत्यंत अभाव होती है, इसलिए सब जगत कारण है। जैसे चिंतामणि से अकारण पदार्थ दिखता है, वैसे ही यह अकारण है। न कहीं संस्कार है और न स्मृति है, सब आत्मा के पर्याय है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। इससे सब जगत को आत्मरूप ही जानो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो संस्कार से अनुभव न होता और अनुभव से स्मृति न होती, तो इस प्रकार प्रसिद्ध क्यों दिखते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम्हारा यह संशय विदूर करता हूं। जैसे हाथी के बालक को मारने में सिंह को कुछ यत्न नहीं करना पड़ता, वैसे इस संशय का नाश करने में मुझे कुछ यत्न नहीं करना पड़ता। जैसे सूर्य के उदय हुए तिमिर का अभाव हो जाता है, वैसे ही मेरे वचनों से तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा। हे राघव, यह सब जगत चिन्मात्र स्वरूप है, उसमें भिन्न नहीं। जैसे खंभे में शिल्पी पुतलियों की कल्पना करता है, परंतु पुतलियां कुछ बनी नहीं, उसके मन में पुतलियों का आकार है, वैसे ही आत्मरूपी खंभे में चित्तरूपी शिल्पी पुतलियों की कल्पना करता है। हे रामचंद्र जी, खंभे में पुतलियां निकलते हैं तभी निकलती है। परंतु आत्मा तो अद्वैत और निराकार है, उसमें और कुछ नहीं निकलता, उसमें वाणी की भी गति नहीं, वह चैतन्य मात्र है। अहम के फुरने से वह अपने को चैतन्य जानता है और फिर आगे शब्दों के अर्थ की कल्पना करता है। अपने को शुद्ध अधिष्ठान चैतन्य जानना ही ज्ञान है। ईश्वर, जीव, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, देश, काल इत्यादि शब्द और अर्थ स्फुरण ही में हुए हैं। जैसे एक ही समुद्र में द्रवता से आवर्त, तरंग, फेन और बुलबुले आदि नाम होते हैं, वैसे ही सब ब्रह्म ही के नाम हैं। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं, ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। वह फूरने से जगत आकार होकर भासता है और फूरने से रहित होने पर जगत आकार मिट जाता है। परंतु फूरने न फूरने में ब्रह्म ज्यों का त्यों है। जैसे स्पंदन और निस्पंदन में वायु ज्यों की त्यों है और सब पदार्थ जो दिखते हैं वे ब्रह्म स्वरूप है। जैसे स्वप्न में अपना ही अनुभव पहाड़, वृक्ष आदि नाना प्रकार का जगत होकर भासित होता है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता ही जागृत जगत रूप होकर दिखती है। वही कहीं अंतवाहक, कहीं आदि भौतिक, कहीं ईश्वर और कहीं जीव आदि होकर भासित होती है। इससे लेकर शब्द अर्थ संयुक्त जो जीव प्रकट होता गया है वह ब्रह्म सत्ता ही इस प्रकार स्थित हुई है। जैसे खंभे में पुतलिया खंभ रूप होती है, वैसे ही आत्मा आकाश में जगत आत्म रूप है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जैसे उसमें जगत आभास है, वैसे ही स्मृति अनुभव भी आभास है। स्मृति जो संस्कार है, उससे जगत की उत्पत्ति तब कहिए जब स्मृति आभास न हो। स्मृति संस्कार भी तो आभास है, फिर वह जगत का कारण कैसे हो सकती है? स्मृति भी तब होती है जब प्रथम जगत होता है। जब जगत ही नहीं तो स्मृति कैसे हो? इससे जगत आभास मात्र है, इसका कारण कोई नहीं। हे रामचंद्र जी, स्मृति संस्कार जगत का कारण तब हो जब कुछ जगत आगे हुआ हो, सो तो कुछ हुआ नहीं। और अनुभव उसका होता है जो पदार्थ भासित होता है, सो इस जगत के आदि में कुछ जगत का अंश न था, फिर अनुभव कैसे कहूं? जो अनुभव ही न हुआ तो स्मृति किसकी हो, और जब स्मृति ही न हुई तो फिर उससे जगत कैसे कहो? इसलिए हे रामचंद्र जी, आदि जगत अकारण अकस्मात उपजा है। जैसे रत्न की चमक होती है, वैसे ही जगत है। यह पीछे से कारण कार्य रूप भासित होता है। इससे हे रामचंद्र जी, जिसका कारण कोई न हो उसे जानिए कि उपजा नहीं। वह जिसमें दिखता है वही रूप है, अधिष्ठान से भिन्न कुछ नहीं। सब जगत ब्रह्म स्वरूप है। स्मृति भी ब्रह्म में आभास जगा है और अनुभव भी आभास है, सो ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं और आभास भी कुछ उपजा नहीं। आभास किनाई जगत दिखता है, आत्मसत्ता अद्वैत है। जिसमें आभास, स्मृति, अनुभव, जागृत और स्वप्न की कल्पना कुछ नहीं तो क्या है? ब्रह्म ही है। फूरना जिसे कहते हैं वह कुछ वस्तु नहीं है। जैसे खंभे में शिल्पी पुतलियों की कल्पना करता है, वैसे ही स्पंदन चैतन्य आत्मा में जगत की कल्पना करता है। शिल्पी तो आप भिन्न होकर कल्पना करता है, और यह चित्त सत्ता ऐसी है कि अपने ही स्वरूप में कल्पना करती है और जगत रूपी पुतलियां देखती है। आत्मा आकाश रूपी खंभा है, उसमें जगत भी आकाश रूपी पुतलिया है। जैसे आकाश अपने आकाश भाव में स्थित है, वैसे ही ब्रह्म अपने ब्रह्म भाव में स्थित है। जगत भिन्न भी दिखता है, परंतु अचैत्य चिन्मात्र रूप है, भेद भावना को नहीं प्राप्त हुआ, और विकारवान भी दिखता है, परंतु विकार नहीं हुआ। जैसे स्वप्न में जीव आप ही सब स्पष्ट दिखते हैं, वैसे यह जगत अपने आप में दिखता है, परंतु कुछ नहीं है। हे रामचंद्र जी, यही आश्चर्य है कि मैंने अपने अनुभव को प्रकट करके उपदेश किया है। जीव आप भी जानते हैं, स्वप्न में नित्य देखते हैं और सुनते भी है, परंतु निश्चय करके जान नहीं सकते और स्वप्न के पदार्थ को मूर्खता से त्याग नहीं सकते। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पुरुष इंद्रियों के इष्ट विषयों को पाकर सुख नहीं मानता और अनिष्ट विषयों को पाकर दुख नहीं मानता, इनके भ्रम से मुक्त है और बड़े भोग प्राप्त हो तो भी अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता, उसको जीवन मुक्त जानो। हे रामचंद्र जी, सब शब्द अर्थ जिसको द्वैत रूप नहीं दिखते, उसे तुम जीवन मुक्त जानो। जिस अविद्या रूपी जागृत में अज्ञानी जागते हैं, उसमें ज्ञानवान सो रहे हैं, और परमार्थ रूपी जागृत में अज्ञानी सो रहे हैं। वे नहीं जानते कि परमार्थ क्या है, परंतु उसमें जीवन मुक्त स्थित है। इस कारण ज्ञानवान इष्ट अनिष्ट विषयों को पाकर सुखी और दुखी नहीं होते, उनका चित्त सदा आत्म पद में स्थित है। राम जी ने पूछा है, भगवान, जो पुरुष सुख पाकर सुखी और दुख से दुखी नहीं होता, वह तो जड़ हुआ, चैतन्य तो न हुआ। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सुख दुख तब होता है जब तक चित्त को जगत का संबंध होता है। जब चित्त जगत के संबंध से रहित चिन्मात्र होता है, तब उपाधिकृत सुख दुख नहीं रहते। जो अपने स्वभाव में स्थित पुरुष है, वे परम विश्राम को प्राप्त होते हैं और सब कुछ करते हैं, परंतु स्वरूप से उनको कर्तव्य का उत्थान कुछ नहीं होता, और सदा अद्वैत में निश्चय रहता है। नेत्रों से वे देखते हैं, परंतु द्वैत की भावना उनको नहीं फुरती। जैसे अत्यंत उत्तम को सब पदार्थ दिखते हैं, परंतु सब पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही जिसकी बुद्धि अद्वैत में दृढ़ हुई है, उसे द्वैत रूप पदार्थ नहीं भासित होते। जिनको द्वैत नहीं दिखता, उनको सुख दुख कैसे लगे? उन पुरुषों ने वहां विश्राम किया है जहां न जागृत है, न स्वप्न है और न सुषुप्ति है। आत्मा के प्रमाद से जीव को कष्ट होता है। जो अपनी विभूति विद्या को छोड़कर प्रसन्न होता है और फिर संसार के क्रूर मार्ग में कष्ट पाता है, वह मनुष्य नहीं मानो मृग है। वह संसार रूपी वन में भटकता कष्ट पाता है। जब प्यास से व्याकुल होता है तब जल की ओर दौड़ता है, पर जहां जाता है वहां मरुस्थल की नदी मृग मरीचिका ही दिखती है, जल नहीं प्राप्त होता। तब आगे दौड़ता है और प्यास अधिक बढ़ती जाती है। इस प्रकार दौड़ता दौड़ता जड़ हो जाता है और दुखी होकर मर जाता है, परंतु उसे जल नहीं प्राप्त होता। यह जल, दौड़ना, जड़ता और मरना, चारों अलग अलग सुनो। हे रामचंद्र जी, मन ही मृग है जो संसार रूपी वन में आ पड़ा है। यह इंद्रियों के विषय रूपी जलाभास को सत्य जानकर शांति के लिए तृष्णा रूपी मार्ग में दौड़ता है, पर वे विषय आभास मात्र है और उनमें शांति रूपी जल नहीं है। इसलिए वह दौड़ता दौड़ता जब वृद्ध अवस्था में पड़ता है तब जड़ होकर बड़े कष्ट को प्राप्त होता है, पर शांति रूपी जल वह नहीं पाता, इससे तृप्त भी नहीं होता। हे रामचंद्र जी, मनुष्य मानो मजदूर है जिसके सिर पर बड़ा भार है। वह अटपटे मार्ग में चला जाता है जहां उसको चोर ने लूट लिया है, इससे दुखी होता है। हे रामचंद्र जी, मनुष्य रूपी मजदूर के शीश पर जन्म का बड़ा भार है। यह संशय रूपी अटपटे मार्ग में खड़ा है, कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट विषय है। इनसे राग द्वेष रूपी चोर ने विचार रूपी धन हर लिया है, इससे वह राग द्वेष और तृष्णा रूपी अग्नि से जलता है। बड़ा आश्चर्य है कि ज्ञानी लोग ऐसे कुमार्ग को त्याग कर उन्होंने परमपद में विश्राम पाया है और अन्य आनंद को त्याग कर परमपद को आनंद को प्राप्त हुए हैं। उन मुक्त पुरुषों को संसार का दुख सुख व्याप नहीं सकता, क्योंकि वे परम अद्वैत शुद्ध सत्ता को प्राप्त हुए हैं। वे सबको देखते हैं, ग्रहण त्याग रूपी अग्नि को त्याग कर उन्होंने परम पद में विश्राम पाया है और सदा उसी में सोए रहते हैं। वास्तव में सुख से वे ही सोते हैं और उनके भीतर सदा शांति रहती है, परंतु वे जड़ता से रहित है और आकाश से भी अधिक सूक्ष्म सत्ता को प्राप्त हुए हैं। जैसे समुद्र में धूल नहीं होती और सूर्य में अंधकार नहीं होता, वैसे ही उनमें इंद्रियों के इष्ट विषयों की तृष्णा नहीं होती। उन विषयों से रहित होकर उन्होंने विश्राम पाया है। यह आश्चर्य है कि अणु से अणु और महत से महत होकर भी वे केवल विश्राम को प्राप्त हुए हैं। हे रामचंद्र जी, जो आत्म सत्ता की ओर से सोए पड़े हैं उनको दुख होता है, पर ज्ञानवान द्वैत जगत की ओर जड़ हुए हैं और अपने स्वरूप में स्थित है, इससे उनको दुख कुछ नहीं है। वे जागृत की ओर से सोए हैं, उनका अविद्याकृत जगत और दृश्य का संबंध दूर हो गया है। जब वे इस ओर से सोए हैं तो उनको फिर दुख कैसे हो। वे पुरुष सदा द्वैत रूप है, वे अनन्य जगत के कर्ता है और अपने को सदा अकर्ता जानते हैं, ऐसे आश्चर्य पद में उन्होंने विश्राम पाया है। जगत के समूह सत्ता समान में स्थित होकर उन्होंने विश्राम पाया है, यह आश्चर्य है। वे सब क्रिया करते हैं परंतु सदा अक्रिय पद में स्थित है और संपूर्ण पदार्थों को स्वप्नवत जानकर सुषुप्त हुए हैं। व्याकाश से भी अधिक सूक्ष्म है, क्योंकि आत्मसत्ता में विश्राम पाया है। वह आत्मसत्ता आकाश को भी व्याप रही है। उसी को आत्मवत जानकर वे स्थित हुए हैं, जो परम स्वच्छ पद है, उसमें सब शब्द अर्थ आकाश रूप हो जाते हैं और आकाश भी आकाश हो जाता है। उस पद में उन्होंने विश्राम किया है, यही आश्चर्य है। नेत्र उनके खुले हुए हैं, पर सुषुप्ति में स्थित है। ऐसे सुषुप्ति है कि उनका द्रग और दृश्य भाव दूर हो गया है। वे जगत के प्रकाश से रहित और परम प्रकाश रूप है। हे रामचंद्र जी, वे बाहर के भोग्य पदार्थ से रहित है और आत्मा में स्थित है। प्रकट में वे सोते हैं, पर सुषुप्ति में जागते हैं, और जागृत से उनको सुषुप्ति है। उस सुषुप्ति से वे सोए हैं और कर्म करते हैं, परंतु कर्ता कारण भाव से रहित है। क्रोध भी करते हैं, परंतु क्रोध के स्फुरण से रहित है। सब ओर से प्रकाशवान निर्भय होकर विश्राम करते हैं। कामना करते भी दिखते हैं, परंतु तृष्णा से रहित है और निसंकल्प पद में स्थित हुए हैं। यह आश्चर्य है कि जिस क्रिया की ओर वे देखते हैं, उसी ओर उनको शांति दिखती है, क्योंकि एक मित्र उनके साथ रहता है, इससे कोई दुख उनके निकट नहीं आता।
हरि ओ हरि ओ ओम सनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।